समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, आपको लेकर चलेंगे देश की परिक्रमा पर भी और जानेंगे कि हमारे संवाददाताओं के पास क्या खास जानकारी है। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और उन खास हस्तियों को भी हम याद करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि या जन्मदिवस है। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी नमस्कार।
Hello, Sir Firozi. Hello and good afternoon. You are tuned to Parikrama on 100.1 FM. I am Abhishek Mukhopadhyay. With me today is my co-host, Sir Firozi. And for you, we have a selection of news, a discussion segment, Dateline India, reports, capsules, business tributes, and much more. All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first.
भारत की वर्ष 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने और वर्ष 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने की योजना।
प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कंग्रेचुलेट नासा टीम ऑन द सेफ रिटर्न ऑफ सुनीता विलियम्स एंड अदर्स फ्रॉम स्पेस दिस मॉर्निंग।
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, केंद्र आतंकवाद को खत्म करने के लिए कड़े कदम उठा रहा है।
इन फुटबॉल, इंडियन मालदीव्स टू क्लैश इन एन इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच एट शिलोंग दिस इवनिंग।
और भारत की ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी स्विस ओपन बैडमिंटन के महिला डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची।
And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about Bharat Antariksh Station. And Sir Firozi, India has planned to have its own space station, namely Bharat Antariksh Station in 2035. And if all plan goes well, an Indian astronaut will be on the moon by 2040. And this was stated by Minister of State in the Prime Minister's office, Dr. Jitendra Singh, while replying to supplementaries in the Lok Sabha today. Mr. Singh said Chandrayaan 4 will be launched through two launch vehicles and it will have five components. In reply to a query on why the chosen four Gaganyaan astronauts have been kept away from the public eye, Mr. Singh said it has been done to keep them away from distractions. He added that Gaganyaan's test flight with a female robot will be launched by the end of this year. The minister said it is a moment of glory, pride and relief that Sunita Williams came back to Earth safely.
बिल्कुल अभिषेक, आखिरकार सितारों के आगे जहां और भी है और उसी जहां से आज सुबह सुनीता विलियम्स और उनके साथ ही सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आए। और आज सुबह जब हमें ये खबर मिली कि सभी अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आए हैं, तो हम लोगों ने भी कहीं ना कहीं एक राहत की सांस ली और अब सभी सुनीता विलियम और उनके साथी को पुनर्वास कार्यक्रम में भेजा गया है, क्योंकि उन्हें अंतरिक्ष में इतना समय बिताने के बाद कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो बेबी फीट की समस्या हो। इसके अलावा उन्हें अब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के लिए अनुकूल होने में समय लगेगा और हम उम्मीद कर रहे हैं कि सुनीता विलियम्स और उनके साथी पृथ्वी पर रहने के लिए तुरंत सही अनुकूल हो जाएं। और क्योंकि ये अंतरिक्ष यात्री ही भारत के कई युवाओं की प्रेरणा स्रोत हैं, क्योंकि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने महत्वपूर्ण प्रगति कर ली है और आने वाले समय में भारत के युवा भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना करियर बनाने की विचार कर रहे हैं और देश उपग्रह प्रक्षेपण में वैश्विक नेता बन गया है। श्रीहरिकोटा से अपने पहले विदेशी उपग्रह प्रक्षेपण के बाद से भारत ने कुल 432 विदेशी उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं, जिनमें से लगभग 90% पिछले दशक में प्रक्षेपित किए गए हैं। ये प्रक्षेपण अंतरिक्ष गतिविधियों के केंद्र के रूप में भारत की बढ़ती प्रमुखता और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों का समर्थन करने की इसकी क्षमता को रेखांकित करते हैं।
Yes, absolutely. And one of India's most ambitious space projects is the establishment of the Bharat Antariksh Station by 2035. And the station will mark India's significant leap in space exploration, placing it among the first countries alongside the US and a few others to have its own space station. We are going to have our own space station. We'll be among the first to have that after the US and one or two other countries.
जी अभिषेक, और जैसे कि अभी हमने बात की कि नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर अंतरिक्ष में 9 महीने बिताने के बाद पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल होने के लिए 45 दिवसीय पुनर्वास कार्यक्रम में शामिल हो गए हैं। SpaceX के क्रू 9 कैप्सूल में सवार दोनों अंतरिक्ष यात्री आज सुबह फ्लोरिडा के तट से दूर सुरक्षित उतरे। एक रिपोर्ट।
अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे अपने लंबे प्रवास में भारहीनता के प्रभाव में रहे अंतरिक्ष यात्री अब इसे समाप्त करने के शारीरिक अभ्यास से गुजरेंगे। माइक्रोग्रेविटी के लंबे समय तक संपर्क में रहने से मानव शरीर के लिए अनूठी चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को 3 चरण वाले पुनर्वास कार्यक्रम में शामिल किया जाता है। पहले चरण में गतिशीलता, लचीलापन और मांसपेशियों को मजबूत करने पर ध्यान दिया जाता है। दूसरे चरण में प्रोबियोसेप्टिव व्यायाम और कार्डियोवैस्कुलर प्रशिक्षण शामिल है, जबकि तीसरे और सबसे लंबे चरण में कार्यात्मक विकास को प्राथमिकता दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से प्रस्थान के 17 घंटे बाद सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर का SpaceX ड्रैगन कैप्सूल सुबह 3:27 पर सुरक्षित रूप से उतरा। कैप्सूल से बाहर आने के बाद उन्हें मेडिकल जांच के लिए भेजा गया। समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
श्रोताओं, कार्यक्रम परिक्रमा में अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास हमारे लिए क्या खास जानकारी है।
Yes, and to celebrate the spirited and multifaceted art, culture and heritage of India's tribal communities, the National School of Drama NSD will be organizing the 7th edition of Adi Rang Mahotsav in New Delhi from the 21st of this month. The 3-day festival will bring together 300 tribal artists from rural India, various states including Himachal Pradesh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, among others, will showcase their traditional performances during the event. We have more from a correspondent.
The 3-day festival will also feature an array of 15 dance and music performances representing 13 states. Various states including Himachal Pradesh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra among others will showcase their traditional heritage. Performances including Gusaddi dance from Andhra Pradesh, Siddhi Dhamal and Padhar dance of Gujarat and Kinnauri Nut dance of Himachal Pradesh will be presented alongside various other traditional dance performances of different states. Further, Nagaland will present the war dance while Odisha will present the captivating Duruha and Singari dances. The festival will also showcase master classes and national seminars on the art, culture and theatre of country's tribal communities. Briefing media in New Delhi today, Director of NSD Chitranjan Tripathi said, the festival aims to create an inclusive platform that brings unique traditions to the forefront. He added that it is a significant step towards ensuring the preservation of tribal heritage for generations to come. For Parikrama, Bhanu Pratap Singh.
Climate change is one of the most pressing issues threatening the very existence of our planet today. And to tackle this enormous challenge, the British Council has launched a climate scale program. Recently, 3 higher education institutions from India were selected for this initiative, with Mumbai University being one of them. Let us hear more about this from our Mumbai correspondent.
The British Council is implementing the Climate Skill Program in 5 countries including Brazil, Mexico, Indonesia, Vietnam and India, aimed at raising awareness among youth pursuing higher education on climate change and developing the necessary skills to address it. The program will be implemented with financial support from the British Council and HSBC. To elaborate on this initiative and its various aspects, we have Dr. Aparna Kerkar from Mumbai University, one of the coordinators of this program.
The University of Mumbai was selected on the basis of its long-term engagement in various climate and environment-related activities like wetland conservation, biodiversity audit, sewage treatment plants, composting plants, rainwater harvesting, through the formation of dedicated committee titled as Carbon Neutral Campus Committee. Though British Council has offered to train 130 trainers and 800 students under this program, it has been decided to extend this program and involve various affiliated institutions across 7 districts that fall under the jurisdiction of University of Mumbai, aiming to train 225 trainers and 1200 students who would be selected from various institutions institutions across these 7 districts. The program would be implemented in various stages, and faculties of the university departments and affiliated colleges will be involved in various capacities. The selected students would be teamed up with the local self-governments, NGOs and other stakeholders to initiate climate action with respect to their own geographical areas to contribute and influence the local developmental agendas. The climate action could be in the form of creating public biodiversity register, wetland conservation programs, energy audits and the like.
Under the first phase of the climate skill program, 25 master trainers will be trained from 22nd to 26th March. Through this initiative, we will see young skilled climate warriors who will work on various aspects to make our planet a better place for future generations. For Parikrama, this is Ankita Apte from Mumbai.
और अभिषेक, वैसे तो होली के त्योहार को गए हुए 5 दिन हो गए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि देश के कुछ हिस्सों से अभी होली का रंग उतरा नहीं है। कल हमने बनारस की बात की, काशी की बात की, जहां होली के बाद पड़ने वाले पहले मंगलवार को बुढ़वा मंगल मनाया जाता है, तो वहीं आज देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में रंग पंचमी पर विश्व प्रसिद्ध पारंपरिक गेर की धूम है। मालवा में होली के जुलूस को गेर कहा जाता है। करीब 3 किलोमीटर लंबी गेर में मुख्यमंत्री मोहन यादव, एनआरआई सहित लाखों लोग शामिल हुए। इसमें लाखों लीटर पानी और हजारों किलो गुलाल रंग लोगों पर उड़ाया गया।
इंदौर में इस बार 3 गैर और 1 फाग यात्रा निकाली गई और फिर सभी ने राजवाड़ा पर सामूहिक रूप से रंगोत्सव मनाया। खास बात यह थी कि गैर को देखने के लिए 370 लोगों ने छत बुक कराई थी। इंदौर की पहचान राजवाड़ा को ढक दिया गया था ताकि रंगों के कारण वह खराब ना हो। आयोजकों से लेकर प्रशासन तक सभी ने गैर की तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी। गैर के बाद सफाई व्यवस्था की भी पूरी तैयारी है। 500 से ज्यादा कर्मचारी एक साथ मिलकर रिकॉर्ड समय में गैर मार्ग को पूरी तरह से साफ करेंगे। इस बार भी गैर के फोटो और वीडियो यूनेस्को को भेजे जाएंगे। वैसे आज कई विदेशी मेहमानों के साथ यूनेस्को की टीम भी इस रंग महोत्सव की साक्षी बनी। गेर में आज अलग अलग रंग दिखाई दिए, कहीं देशभक्ति, कहीं पर राधा कृष्ण की रासलीला, तो कहीं पर भोलेनाथ का डमरू। हर हर महादेव, जय हनुमान और जय श्री राम के नारों से रह रहकर पूरी गेर गूंजती रही। गेर में शामिल होने आए लोगों पर मिसाइल से रंग उड़ाया गया। वहीं सुरक्षा का दायित्व संभालने के लिए खुद इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह कंट्रोल रूम में मौजूद रहे। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी की नजर रही। इसके अलावा गेर में जगह जगह पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में भी मौजूद थे। हुड़दंगियों पर नजर रखने के लिए पुलिस कर्मियों को छतों पर तैनात किया गया था। गेर के सफल आयोजन के लिए पुलिस और प्रशासन सुबह से ही अलर्ट था। लगभग 2000 से अधिक पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी। ड्रोन से भी निगरानी की गई। कुल मिलाकर इंदौर ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि रंगों का आयोजन किस तरह से किया जाता है और रंगों का यह मेला क्यों प्रसिद्ध है। परिक्रमा के लिए भोपाल से मैं संजीव शर्मा।
The temple city of Andhra Pradesh, Tirupati, witnessed a landmark moment with the inauguration of the Indira Gandhi National Center for the Arts, IGNCA, Regional Center. This newly established center reflects a deep commitment to preserving India's cultural heritage. We have more on this from a correspondent.
Marking a significant milestone in the preservation and promotion of India's rich artistic and cultural heritage, Indira Gandhi National Centre for the Arts, IGNCA, an autonomous trust under the Ministry of Culture, recently inaugurated its 10th regional centre in the heart of Tirupati. Virtually inaugurated by Andhra Pradesh Deputy Chief Minister K. Pawan Kalyan, this institute will be dedicated to the specialized study of Vaishnava Agama and the Indian architectural tradition. The centre, established in collaboration with the National Sanskrit University, NSU, promises to become a hub for cultural and academic activities. The signing of a memorandum of understanding between IGNCA and NSU emphasizes their shared vision to further cultural and academic collaboration and envision as a vibrant hub for research, documentation and other architectural tradition of India. The inauguration of IGNCA Regional Center in Tirupati signifies a profound commitment to preserving and celebrating the rich cultural heritage of the region, ensuring that the arts continue to thrive and inspire future generations. Sai Sishla for Parikrama, Akashwani, Vijayawada.
The great one-horned rhinoceros population in West Bengal has increased to 392 from 229. Let's hear more.
A rhino census conducted on 5th and 6th March across Jaldapara National Park, Gorumara National Park, Chapramari Wildlife Sanctuary and parts of Jalpaiguri Reserve Forest of West Bengal covering an area of 396 square kilometer. In a press release, the Forest Department has informed rhinoceros population in Gorumara National Park recorded between 58 to 63 with an average estimate of 61, whereas in Jaldapara National Park the estimate is within the range of 327 to 334. with an average estimate of 331. Jaldapara National Park of West Bengal is the second largest habitat of one horned rhinoceros after Kaziranga National Park of Assam. The Forest Department informed that earlier the population was 347 in 2022 census. In the rhino census conducted on 5th and 6th March, 631 forest staffs have participated with an active involvement of 15 NGOs and civil society groups. Kalyan Laha, Akashvani News, Kolkata.
In business news today, the benchmark domestic equity indices today ended with modest gains, extending the winning streak for the third straight session. The 30-share index of the Bombay Stock Exchange, Sensex, rose 148 points to close at 75,449. The National Stock Exchange Nifty 50 also added 73 points to settle at 22,908. In the global crude market, Brent crude was trading over 0.5%, down at $70.18 per barrel, and the WTI crude also fell 0.6% to trade at $66.49 per barrel when reports last came in. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading down at 89,020 rupees per 10 grams, and silver 999 fine was also trading down at 100,790 rupees per kilogram when reports last came in.
और अब चलते हैं खेल के मैदान की ओर और वहां की भी हलचल ले लेते हैं.
In badminton, India's Trisha Jolly and her partner Gayatri Gopichand have advanced to the women's doubles second round at the Swiss Open at Basel in Switzerland. The ace Indian duo defeated Switzerland's Aline Muller and Netherlands Kelly van Buiten 21-16, 21-17 in the first round. Trisha and Gayatri will now face the German pair of Celine Hoops and Emilie Lehmann in the pre-quarterfinals tomorrow.
भारत और मालदीव आज शिलोंग में एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैत्रीपूर्ण मैच खेलेंगे. ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा. 25 मार्च को बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले AFC एशिया कप क्वालिफायर के लिए ये एक रिहर्सल मैच है.
Yes, and now we will take on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
We remember freedom fighter Narayan Bhaskar Khare, who was born on the 19th of March 1884 in Panvel, Maharashtra.
Khare, a medical doctor by profession, was member of Indian National Congress from 1916 to 1938. He was the president of the Central Provinces Provincial Congress Committee, Harijan Sevak Sangh, Nagpur, and a member of the All India Congress Committee for several years. He was also the founder and editor of nationalist Marathi paper Tarun Bharat. Khare resigned from the Legislative Council in pursuance of the mandate by the Lahore Congress and was imprisoned for participating in the civil disobedience movement. After the 1937 elections, Khare became the first premier of the newly formed Central Provinces and Berar.
During the Quit India movement in 1942, a crowd in Ashti and Chimur killed some policemen and 30 people were tried and sentenced to hang. Khare formed the Capital Punishment Relief Society to help the people of Ashti and Chimur. Khare was a member of the Viceroy's Executive Council from May 1943 to July 1946, where he was in charge of the Commonwealth Relations Department. Later, Khare also served as a member of the Constituent Assembly. Khare became a member of the Lok Sabha from Gwalior in 1952 and served till 1955. He later settled in Nagpur and died in 1970. We salute the great nationalist.
We also remember martyr Muhammad Khan, a resident of Delhi, who participated in the First War of Indian Independence in 1857. Khan took active part in fighting against the advancing British army in Delhi and was captured by British troops after reoccupation of Delhi. He was accused of rebellion against British rule and executed by hanging on the 19th of March 1858. We salute the great son of soil.
That brings us to the end of this episode of Azadi Ka Safar with AIR News. See you in the next episode tomorrow.
Well, in some more news, the Kerala government has decided to implement the Kerala Health System Improvement Program, a major initiative supported by the World Bank with a total investment of 3,464 crore rupees. The project, to be implemented across all 14 districts in the state, will receive 2,424 crore rupees in the financial assistance from the World Bank. It is spread over a period of 5 years, beginning this year through 2030. Let's hear the details from a Kochi correspondent.
The KHSIP aims to strengthen and modernize the state's health systems to deliver value-based healthcare while addressing the challenges posed by Kerala's advanced demographic and epidemiological transitions. It will also foster greater intersectoral collaboration to effectively respond to emerging threats, including the impacts of climate change. The project is designed to enhance the efficiency of the state's healthcare delivery. One of its key components will be the creation of a comprehensive ecosystem for the prevention and management of non-communicable diseases while simultaneously strengthening emergency and trauma care services. This will include the establishment of a network of 24/7 urgent care facilities equipped with ambulances and trauma registries. The program also focuses on re-engineering health systems to tackle ongoing challenges as well as emerging issues, particularly in elderly care. Local self-governments will play a crucial role in these initiatives. Furthermore, the project will aim to improve the state's healthcare workforce, expand digital health applications, and increase public finance for health services. Raj Mohan, Akashwani News, Kochi.
श्रोताओं, अब समय है उन खास हस्तियों को याद करने का जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिवस है. अभिषेक, सबसे पहले किसे याद कर रहे हैं?
यस, वी रिमेंबर एडगर राइस बरोस, हु पास्ड अवे ऑन दिस डे 1950. ही वाज एन अमेरिकन राइटर बेस्ट नोन फॉर हिज प्रोलिफिक आउटपुट इन द एडवेंचर, साइंस फिक्शन एंड फैंटेसी जॉनर्स. Best known for creating the characters Tarzan. You remember the famous character Tarzan? It was created by this very man, Edgar Rice Burroughs, who, and this Tarzan appeared in a series of 24 books by him and John Carter, another famous, very famous character, Sir Firozi, who was a recurring character in a series of 11 books, that is John Carter. And he also wrote the Pellucidar series, the Amtor series, and the Caspak trilogy. And Tarzan, of course, remains one of the most successful fictional characters to this day and is a cultural icon. And also moving on, Mohan Babu is an Indian actor and film producer known for his works predominantly in Telugu cinema, was born on this day. An alumnus of the Madras Film Institute, Mohan Babu has acted in more than 500 films and lead, supporting and a variety of roles. In 1995, he received Filmfare Award for Best Actor Telugu for his work in the multi-starrer Pedara Yudu, which also starred Rajnikanth in a pivotal role. In 2007, he received the Cine Ma Award for Best Supporting Actor for his work Yamadonga. Mohan Babu fetched an honorary doctorate from the University of California, Berkeley, for his contribution to the field of cinema and education. He is the co-owner of a production company such as Sri Lakshmi Prasanna Pictures, 24 Frames Factory, and Manchu Entertainment. In 2017, he garnered the Filmfare Lifetime Achievement Award South. And in 2017, he received the Special Appreciation Award for completing 40 years in cinema at the 6th South Indian International Movie Awards.
और आज बॉलीवुड अभिनेता नवीन निश्चल की भी पुण्यतिथि है. उन्होंने फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से अभिनय की शिक्षा ली और वे FTII के पहले गोल्ड मेडलिस्ट रहे. उनकी पहली फिल्म थी सावन भादो. इस फिल्म की सफलता ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया. इसके बाद नवीन ने विक्टोरिया नंबर 203, धुंध, हस्ते जख्म और परवाना जैसी कई यादगार फिल्मों में काम किया. नवीन की आखिरी फिल्म थी खोसला का घोसला, जिसमें उन्होंने सहायक किरदार निभाया था.
तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां रात
कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई।
And Abbas Ali Beg was born on this day in 1939. He is an Indian former cricketer who played in 10 tests between 1959 and 1967. In a career spanning 21 years, he scored 12,367 runs in first-class cricket at an average of 34.16. He coached the Indian cricket team during his tour to Australia in 1991 and 92 and the 1992 Cricket World Cup. And also Sir Firozi Srinivas Avasa Rala was born on this day in 1984. He is an actor, film director and screenwriter who works in Telugu cinema. He received 2 Nandi Awards and a Seema Award. He is also a professional racquetball player who represented India in the Racquetball Asian Championships.
आज ज्ञानपीठ पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार और व्यास सम्मान जैसे अलंकरणों से सम्मानित साहित्यकार केदारनाथ सिंह की भी पुण्यतिथि है। केदारनाथ सिंह चर्चित कविता संकलन तीसरा सप्तक के सहयोगी कवियों में से एक हैं। इनकी कविताओं के अनुवाद लगभग सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं के अलावा अंग्रेजी, स्पेनिश, रूसी, जर्मन और हंगेरियन आदि विदेशी भाषाओं में भी किए गए हैं।
Nikolai Gogol was a Russian novelist, short story writer and playwright of Ukrainian origin. Gogol used the grotesques in his writings, for example in his works And the Nose V and the Overcoat and the Nevsky Prospect and the novel Taras Bulba in 1835, the play Marriage in 1842 and short stories The Tale of How Ivan Ivanovich Quarreled with Ivan Nikiforovich and the Portrait and the Carriage also among his best known works.
आज पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी की भी पुण्यतिथि है। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी की गिनती आर्य समाज के प्रमुख नेताओं में की जाती थी। वे स्वामी दयानंद सरस्वती के शिष्य थे। गुरुदत्त विद्यार्थी लाला लाजपत राय और लाला हंसराज के प्रयत्नों से ही 1 जून 1886 को डीएवी स्कूल की स्थापना हुई।
Philip Milton Roth was born on this day in 1933. He was an American novelist and short story writer. Roth in fiction, often set in his birthplace of New York, New Jersey, is known for his intensely autobiographical character, for philosophically and formally blurring the distinction between reality and fiction, for its sensual, ingenious style and its provocative explorations of American identity. He first gained attention with the 1959 short story collection Goodbye Columbus, which won the US National Book Award for Fiction.
आज हिंदी सिनेमा के लिए कई उम्दा गाने रचने वाले गीतकार योगेश की जयंती है। योगेश 16 वर्ष की उम्र में माया नगरी मुंबई आ गए। योगेश ने सखी रॉबिन फिल्म से साल 1962 में बतौर गीतकार डेब्यू किया। उनकी गिनती उन गीतकारों में होती है जिन्होंने अपने समय में सबसे बेहतरीन फिल्मकार रहे ऋषिकेश मुखर्जी, बासु चटर्जी आदि के साथ खूब काम किया। वहीं हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार माने जाने वाले राजेश खन्ना की फिल्म आनंद के लिए भी उन्होंने ही गाने लिखे।
जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
योगेश ने मंजिल मिली और छोटी सी बात जैसी फिल्मों के लिए भी गीतों की रचना की। फिल्मों के अलावा कई टीवी धारावाहिकों की कहानियां भी लिखी। इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
वॉल्टर ब्रूस विलिस वाज बोर्न ऑन दिस डे 1955। ही इज अ रिटायर्ड अमेरिकन एक्टर। ही अचीव्ड फेम विद लीडिंग रोल ऑन द कॉमेडी ड्रामा सीरीज मूनलाइटिंग फ्रॉम 1985 टू 1989 एंड हैज अपीयर्ड इन ओवर 100 फिल्म्स। ही गेन रिकॉग्निशन एज एन एक्शन हीरो फॉर पोर्ट्रेइंग जॉन मैकलेन इन द डाई हार्ड फ्रेंचाइज Willis' other credits include The Last Boy Scout, Pulp Fiction, 12 Monkeys, Fifth Element, Armageddon, Sixth Sense, Unbreakable, The Whole Nine Yards, Tears of the Sun, Sin City, The Expendables, Red, Looper and Glass.
और श्रोताओं अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का. इजाजत दीजिए सर फिरोजी और अभिषेक मुखोपाध्याय को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की.
नमस्कार.